وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, اور البتہ اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت, ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ, پھر ہم چھین لیں اس کو اس سے. اب یہ ایک سٹیٹ دکھائی ہے انسان کی کہ کیا ہوتا ہے. ایک انسان کے پاس بڑی نعمتیں, بہت نعمتیں, لیکن اس کو بھی کہا گیا اذقنا. آپ غور کریں لفظ کو, اذانا نہیں ہے, کوئی اور لفظ بھی آ سکتا تھا, مگر اذقنا یعنی چکھاتے ہیں ہم. اس لیے کہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں, جتنی لگژری, خوشحالیاں, خوشیاں, سب چیز یہ صرف چکھنا ہے. چکھنا کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں میں نے نمک چکھا, تو کیسے چکھتی ہیں آپ؟ اتنا سا اٹھا کے صرف زبان پہ ٹیسٹ کرتی ہیں نا, انگلی کی نوک پہ لگا کے زبان کی نوک پہ رکھتی ہیں, یا پوری پلیٹ کھانا چکھنا نہیں ہوتا نا. اسی طرح دنیا میں جتنی خوشیاں ہیں, راحتیں ہیں, آسانیاں ہیں, یہ سب چکھنا ہے نعمتوں کا. اصل نعمتیں کہاں ہیں؟ وہ جنت ہے. اسی طرح دنیا میں جتنی تکلیفیں ہیں, جتنی پریشانیاں ہیں, جتنے دکھ ہیں, ان کے لیے بھی اذقنا ہے, وہ بھی صرف چکھنا ہے. اصل جو مصیبت, پریشانی, دکھ ہے نا, وہ جہنم ہے. یہ دنیا میں صرف ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. ہم اس کو ہول سمجھ لیتے ہیں, ٹوٹل سمجھ لیتے ہیں, سارا کا سارا سمجھ لیتے ہیں, صرف چکھنا ہے. اس چکھنے میں ہی ہم کتنے گم ہو جاتے ہیں. اور اس دکھ اور پریشانی جس کا صرف چکھنا ہے, اس کو ہم کتنا بڑا بنا لیتے ہیں. حالانکہ وہ جو وہاں ہے نا, وہ جب نظر آئے گی تو سوچے کیا حال ہوگا. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. ورڈ جو ہے نا بہت زبردست یہاں پہ آیا. یہ جو دو آیتیں ہیں نا, یہ 9 اور 10, یہ ہمیں جو ہیومن سائیکالوجی کچھ بتاتی ہیں موسٹلی. کیونکہ اذقنا الانسان, الانسان آیا نا, کوئی بھی عام انسان بھی ہو سکتا ہے اس میں, کوئی خاص انسان بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جیسے عام انسان کیسے ہو سکتا ہے, ال انسان ہے. جیسے والعصر, ان الانسان لفی خسر, اس میں بھی تو ال انسان ہے نا, تو کوئی بھی انسان یعنی عام انسان ہو سکتا ہے. اور الف لام کے ساتھ خاص طور پہ کوئی کافر بھی ہو سکتا ہے, یا ایسا انسان جو آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتا, یا ایسا انسان جو کہ اللہ کے ساتھ جس کا کنیکشن نہیں ہے. کس کی آپ کو اگزامپل بھی ابھی آپ کو ایک دوں گی, اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلوز کنیکشن نہیں ہے, تو پھر کیا ایٹیچیوڈ سامنے آتے ہیں, وہ یہ ہمیں یہ دو آیتیں بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے, دو آیتوں میں ہمیں دو سچویشنز بتائی گئی ہیں. نمبر ون سچویشن کیا بتائی گئی ہے آیت نمبر 9 میں, کہ جب انسان کو ہم اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, تو پھر پہلے رحمت کا مزہ دیکھ لیں کیا رحمت کا مزہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہے کہ صحت ہے, جوانی ہے, گھر بار ہے, ریل پیل ہے, ساری آسانیاں ہیں, جاب ہے, مطلب وہ بہت اچھا سب کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب بڑا اچھا ہے, خوشیاں چل رہی ہیں. اب کیا ہوتا ہے, ثم, پھر ایک ثم تھوڑا اس کے لیے آتا ہے نا, جیسے فا بھی پھر ہم کرتے ہیں, ثم بھی پھر کر منع کرتے ہیں, لیکن ثم میں تھوڑا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ اس کے اندر رہ رہا ہے, رہ رہا ہے رحمت کے اندر رہ رہا ہے, یہ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے. اب کیا جب ہوتا ہے ہمارے پاس بہت اچھی زندگی گزر رہی ہوتی, تو وی گیٹ یوز ٹو اٹ. ہم اس کے ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم تو ڈیزرو کرتے ہیں یہ, ہم بس یہ ہمارا حق ہے اور ہمارا تو بس اسی طرح ہم نے رہنا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں کسی چیز کے, پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ جو ہم نے پیچھے لنبلو ونکم کی بات کی ہے نا, اسی کو دیکھ لیں آپ, یہ امتحان ہو رہا ہے. پھر کیا ہوا, ثم نزعناها, پھر وہ لگژریز میں رہتا رہا, پھر ایک دن کیا ہوا, ہم نے چھین لیا اس کو, منہ اس سے کوئی ایک رحمت, چلو ساری نہیں, کوئی ایک چیز چھین لی, عافیت ہے یا صحت ہے یا رزق, جاب چلی گئی, یا کوئی گھر بار لٹ گیا, یا کسی پیارے کی ڈیتھ ہو گئی, یا کسی کے گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہو گیا, کوئی ڈائیورس ہو گئی, کوئی کچھ ایسا ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا, اللہ اکبر, دس از دا ٹائم آف ٹیسٹ. ٹھیک ہے, اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا معاملہ کیا ہے, کیا کرتا ہے انسان. ایکسیپشنل کیس کو بعد میں بتایا جائے گا آیت نمبر 11 میں, مگر मोस्टली इंसानों का क्या हाल होता है, इन्नहू लयऊसुन कफूर, वो बहुत ज्यादा मायूस होने वाला, बहुत शदीद नाशुकरा हो जाता है। यानी मायूसी इतनी कि बस अब कुछ नहीं रह गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक अल्लाह ताला ने रहमत ली और उसका हाल क्या हुआ, और ले वो दी, उसी ने दी थी, मिन्ना रहमतन, देखिए मिन्ना पहले आया है और रहमतन बाद में आया, रहमतन मिन्ना भी आ सकता था, हमने अपनी तरफ से दी थी, हमने दी थी स्पेशली उसको, हम तो अल्लाह ने दी थी, मगर जब वो लेता है ना तो उसने पहले तो आज तक कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब जो जब उसने ली, इतना डिप्रेशन में चला गया, सख्त मायूस हो गया, बिल्कुल कोई चीज की उम्मीद छोड़ दी, और नेक्स्ट स्टेप क्या था, कफूर। इसके अंदर कफूर में क्या आता है, ना शुक्री भी आती है, कुफर भी आ जाता है, इनकार भी आ जाता है, इनकार भी तो कुफर है ना, यानी अल्लाह का इनकार कर देता है, अब तो बस ठीक है क्या मुझे दिया। जैसे किसी ने मुझे साथ ये शेयर किया वाकया, इसकी उसमें बता रही हूँ आपको, कि मुसलमान एक लड़का है, उसे जब कहा गया भाई आओ कुरान पढ़ो सीखो ये वो, तो उसने कहा भाई कुरान मैंने क्या पढ़ना, मेरा बाप तो इतना बीमार रहा, फिर वो फौत हो गया, उस वक्त अल्लाह कहाँ था, मुझे बिल्ला उस वक्त अल्लाह कहाँ था, हमने इतनी दुआएं मांगी, तो तब उसने उस वक्त हमारी नहीं सुनी, अब हम क्यों आके नमाजें पढ़ें कुरान पढ़ें। यानी उस वक्त इंसान इतना नाशुकरा हो जाता है कि यानी उसको ये भी नहीं याद रहता कि कभी तो मेरे रब ने मेरे ऊपर कोई कर्म किया था, एंड सेकेंडली एक चीज अगर उसने ली है तो करोड़ों चीजें उसने मुझे दी भी तो हुई है, ये सांस तुम्हारी चल रही, हाथ पैर तुम्हारे चल रहे, आंखें चल रही, माँ तुम्हारी मौजूद, बहनें तुम्हारी मौजूद, कितना कुछ है तुम्हारे पास, आफियत है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, आजा की सलामती है, कितना कुछ है, और तुम्हें एक चीज जब तुमसे छीन ली तो तुम इस स्टेट में चले गए कि तुमने उस रब से ऐसी मायूसी की और ऐसी कुफर की बातें कहने शुरू करनी कि रब का इनकार कर दिया, अब तो हम मानते ही नहीं। कई लोग नमाज छोड़ देते हैं, अब मैंने नमाज पढ़नी, क्या मिला नमाजें पढ़ के, कुछ मिला पहले, यानी अल्लाह से नाराजगी शो कर रहे हैं कि हमें अल्लाह से बड़ी नाराजगी है कि उसने पहले क्यों सुना, यानी एक तो मेरा हक था तो उसका क्या से वो कर सकता है कि हमारे हमारी जो हमने कहा था वो माना ना जाए, इतनी आपकी दोस्त, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये इंसान का पता चलता है जब कोई नेमत छिनती है। वैसे तो हम सब दीनदारी और इसका एक लबादा ओढ़े बैठे रहते हैं, लेकिन पता तब चलता है जब कोई चीज हाथ से चली जाती है, तब पता चलता है कि हम अंदर से क्या है, जिसका हमें शायद आम हालात में अंदाजा भी नहीं होता। आमूल क्या हालात में जिंदगी चल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, चलो छोटी मोटी ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन है, उसमें नहीं किसी की हकीकत खुलती, हकीकत खुलती है ऐसे हालात में। फिर अल इंसान जो है ना, वो एक इंसान जो है वो शदीद मायूस हो जाता है, बस अब क्या रह गई हमारी जिंदगी, बस तो बस सोग में ही रहते हैं, सोग में से ही निकलते, बस वो एक रिटेलिएशन, एक रिएक्शन है इस चीज का कि अल्लाह ने क्यों हमसे लिया। बाज घर के काम छोड़ देंगे, बस अंधेरा करके बैठे रहेंगे, बस एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट में चले जाएंगे कि उससे निकल ही नहीं पाते, हर चीज छोड़ देते हैं। ये क्यों है, मायूसी की वजह से, और मायूसी को कुफर कहा गया है क्योंकि मायूस होने वाला इंसान ये बता रहा है कि वो पता है किस चीज का इनकार कर रहा है, जो आप ये बोलते हैं ना इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो इसका इनकार कर रहा है, वो रिफ्यूज कर रहा है इसको, अल्लाह कुल्ली शैइन कदीर नहीं है, तभी तो वो मायूस हुआ। अगर उसका ये यकीन होता इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर तो मायूस कैसे हो सकता था, बताए, हर एक हालत में भी उसके पास होप होना था, होप, लेकिन ये उस उम्मीद को छोड़ देते। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस होते, मोमिन तो मायूस हो ही नहीं सकता, वो तो कभी ये कह ही नहीं सकता कि नहीं बस अब नहीं, बस खत्म, सब कुछ खत्म। तो जब इंसान का ये जो मैं आपको बता रही ना कि मुसलमान लड़के ने ऐसे कहा, अब मुसलमान लड़का किस तरह स्टेज पे पहुंचा कि जब कोई चीज छीन गई, इसीलिए जब कनेक्शन अल्लाह ताला से मजबूत नहीं होता, स्ट्रॉन्ग नहीं होता, جب کہتے رہتے ہیں آؤ اللہ سے مضبوط کرو, اس رسی کو تھام لو, اس قرآن کو تھام لو, جب یہ کنیکشن لوز ہوتا ہے نا تو انسان سے جب ثم نزعنا منہ, جب یہ چیز آتی ہے نا, چھین لی جاتی ہے کوئی چیز, تو وہ پھر کولیپس کر جاتا ہے, اس کا ایمان بھی کولیپس کر جاتا ہے. کئی اللہ کا انکار کر دیتے ہیں, کئی اس سے ناراضگی اتنی زیادہ کرتے ہیں, گلے شکوے اتنے کرتے ہیں کہ استغفر اللہ بولا بھی نہیں جاتا. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ سے اٹھ جاتا ہے, ٹرسٹ ہی اٹھ جاتا ہے, وہ دے دون ٹرسٹ. اب وہ پھر کئی کہتے ہیں کہ بلیو کر کے کیا کرنا ہے گاڈ پہ. کچھ ایسی اسٹیٹس میں چلے جاتے ہیں کہ مایوسی کی انتہا میں چلے جاتے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے پھر. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز دی تو اس نے ہی دی تھی نا, منا رحمت ان کا کیا مطلب ہے, اس نے ہی تو دی تھی نا, تو سب چیزیں میرے پاس امانتیں ہیں, چاہے وہ صحت ہے, چاہے وہ زندگی ہے, چاہے وہ آنکھیں ہیں, چاہے وہ سماعت ہے, بصارت ہے, چاہے وہ کوئی پیارے ہیں میرے رشتے, چاہے وہ کوئی میرا گھر بار ہے, چاہے بزنس ہے, چاہے مال ہے, باقی چیزوں ہم کہتے ہیں اللہ کا ہی ہے نا, اللہ کا ہی مال اللہ کا ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کسی کے پر اگر ایسی اسٹیٹ آ جائے تو پھر ایسے کیوں ہوتا ہے کہ وہ اتنا ناشکرا ہو جاتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کو امانت نہیں سمجھتا, ملکیت سمجھتا ہے, میں مالک ہوں, اس کے کیا مجال کہ وہ میرے سے کچھ چھینے. کیا آپ سوچیں صرف تھوڑی دیر کے لیے, آج تک ہم نے کبھی سوچا کہ میری اولاد امانت ہے, میرا شوہر میری امانت ہے, میرے پاس صرف میرا گھر بار امانت ہے, میری صحت امانت ہے, میری آنکھیں یہ جس سے میں دیکھ رہی نا یہ کسی کی امانت ہے, وہ چاہے تو نہ آنکھوں کو چھین لے, میں دیکھ ہی نہ سکوں, نہیں میں اپنی پراپرٹی سمجھتی ہوں. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت ایمان والے ہیں. اسی وجہ سے جب اللہ اپنی امانت لیتا ہے تو ہم سے صبر نہیں ہوتا. اسی وجہ سے پھر ہم اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون تو منہ سے بول دیتے ہیں لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, جس کی تھی اس نے واپس لے لی. اگر انسان کا یہ ایمان ہو نا تو وہ پھر مایوس کبھی نہیں ہوگا. لیکن یہ اب مایوس ہو گیا, اب مایوسی ایک اندھیرے ہیں, مایوسی کے اندھیروں میں چلا گیا, اس کا ایمان تک جاتا رہا, شدید کفر میں پڑ گیا, شدید ناشکری میں. اللہ یہی تو چیک کر رہا تھا کہ اب کیا ریئیکشن ہوتا ہے اس کا. فیل, اصلیت آ گئی تمہاری سامنے. سوچیں جب جوانی بڑھاپے میں بدل جائے, یا جاب چلی جائے, یا اولاد چھوڑ جائے, یا کوئی فوتگی ہو جائے, یا صحت چلی جائے, بیماری آ جائے, کیا ریئیکشن ہم کرتے ہیں, یہ چیک ہو رہا ہے. یہی تو جگہ تھی جہاں پہ بتانا تھا اللہ کے اوپر ایمان کیا ہے, اللہ پہ یقین کیا ہے, اللہ پہ توکل کیا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُنَا اور جب ہم چکھاتے ہیں اس کو, البتہ اگر ہم چکھائیں اس کو, نعماء نعمت آسائشیں آسانیاں بھلائیاں, بعد ضراء بعد تکلیف کے. اب یہ سیکنڈ سچویشن ہے, اب اس سچویشن میں کیا ہو گیا, اب پھر نعمت اللہ نے دے دی, بڑی تکلیفوں کا ٹائم گزرا, مثلا اولاد نہیں تھی, بڑی اولاد کے لیے دعائیں کرتے تھے, اب اللہ نے اولاد دے دی, یا مسلم کسی کی شادی نہیں ہو رہی تھی, اللہ اتنی دعائیں اتنی دعائیں, بڑی دعائیں اور بڑے وہ اور بڑا کچھ کیا اور کیا کیا, اور پھر اس کے بعد اللہ نے وہ کام کر دیا. یا جاب نہیں تھی, اب اتنی اچھی جاب مل گئی, اس کی تنگی دور ہو گئی, اب کیا کرتا ہے, ذرا مست ہو, جو پہنچی تھی اس کو, جو اس کو مصیبت پہنچی تھی نا, اس کے بعد اللہ نے اب نعمت کا مزہ چکھا دیا. اب اس کا حال کیا انسان کا, دیکھو, لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, ضرور کہے گا میرے تو دکھ دلدر دور ہو گئے, تکلیفیں دور ہو گئیں مجھ سے, اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُور, بے شک وہ البتہ خوش ہونے والا, بہت فخر کرنے والا, بس اب زندگی میں بڑا مزہ آ گیا, اب یاد ہی نہیں کبھی دعائیں بھی کی تھی, اب تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کبھی یہ سوچا بھی تھا کہ کبھی محرومی بھی تھی. آپ بجائے کہ اللہ کی طرف رجوع کرتا, شکر ادا کرتا, ان دنوں کو یاد کرتا, اللہ میرے اوپر کبھی ایسے بھی تو دیتے, आज इतनी शुक्रगुजारी और आजी आ जानी चाहिए थी। अब सेलिब्रेशन हो रही है, पार्टियां हो रही है, फलाना आ जाओ, तुम आ जाओ, सेलिब्रेशन, इतनी सेलिब्रेशन, उसके अंदर इतना फखर, इतना वो। अब किसको याद है सज्दे करने का, शुक्राने पढ़ने का, और किसको याद है ये सु... इतना प्राउड हो जाता है, फखूर फखर करने लगता है, अब इतराना शुरू कर देता है, शेखियां मारने लगता है, यानी दूसरी एक्सट्रीम पे चला जाता है, खुशी में भी आपे से बाहर, और खुद को बड़ी चीज समझ लेता है, मैंने ही ऐसा किया था, मैंने तो फिर ये किया, फिर वो किया, फिर फलाना ना ऐसे हो गया, और फिर बड़ी बड़ी बातें, तब भी अपना रब नहीं याद आता, और उस खुशी में भी नाफरमानी के काम करता है। और भाई तुम इतने अरसे से तुम दुआएं कर रहे थे, शादी हो, हाय किसी तरह अच्छा रिश्ता मिल जाए, जब वक्त आया तो अब तुम्हें तो याद भी नहीं है कि तुमने अल्लाह से कभी दुआएं की थी। अब वो अल्लाह की नाफरमानी कि खुशी मिल के भी तुम्हें आज ही ना करनी आई, खुशी के इजहार में भी तुम इतनी हद से आगे बढ़ गए। वो उस वक्त भी इंसान इतना खुशी में भी आपे से पाए, और फखर करने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, अल्लाह अकबर। फिर उस वक्त ऐसे लगने लगता है कि कोई देख के ये नहीं कह सकता कि इस बंदे का दीन से कोई ताल्लुक है, इसने कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है, कोई पता नहीं चलता। यानी इतने हम फिर आपे से बाहर होते हैं, और इतने हम इतराने वाले और अकड़ने वाले बन जाते हैं, इतने नाजो अंदाज दिखाते हैं। फिर मजा कि पहले रिज्क की तंगी थी, अब रिज्क आया तो ऐसे हो गए कि कभी तंगी के दिन देखे ही नहीं थे। इतनी शेखियां, इतनी शो ऑफ, इतना प्राउड होना कि लगता ही नहीं ये कभी वो इंसान था। ये इंसान की हालत है। नहीं, इंसान कितनी जल्दी भूल जाता है अपने पिछले उसको। यानी दोनों आयतों में आप देखें ना तो क्या पता चलता है कि इंसान कितनी जल्दी पास्ट को भूल जाता है और फ्यूचर को भी भूल जाता है। यानी इतना जल्दबाज है ना कि अगले पिछले हालात में गौर नहीं करता, उनको याद नहीं रखता। इसीलिए नेमत के बाद तकलीफ आ जाए, रहमत अल्लाह ताला अगर ले लेता है, छीन लेता है, तो नाशुकरी करने लगता, नाउम्मीद होता है। ये नहीं सोचता अल्लाह जिस अल्लाह ने मुझे पहले नेमत दी हुई थी वो फिर भी तो दे सकता है। इसी तरह अगर तकलीफ मुसीबत के बाद कोई नेमत मिल जाती है, बजाय ये सोचने की अल्लाह पिछले हालात में मेरे पास ये नेमत नहीं होती थी, अब मैं अगर अकड़ूंगी तराऊंगी कल को ये ना अल्लाह दोबारा छीन ले, अल्लाह की चीज है, ये मेरा हक थोड़ी है, जो पहले उसने अगर नहीं मुझे दी हुई थी ये ना हो कि वो दोबारा मुझसे वापस ले ले। जरूरी तो नहीं कि मैं हमेशा इसी तरह हूं। उसको ऐसे लगता है जैसे पता नहीं अब ये नेमत मिल गई, अब तो मेरे पास ही रहनी है। इसीलिए इतना नाचते कूदते और इस कदर अपनी यानी दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं कि हैरत होती है कि इनको ये अंदाजा नहीं कि अगर अल्लाह ने छीन ली वापस तो क्या होगा, पहली हालत पे वापस भेज दिया तो क्या होगा, जो दे सकता है वो वापस भी दे सकता है, पहले भी तो उसने नहीं दी हुई थी। ये नेमत और राहत की हालत हो सकता है कल ना बाकी रहे। तो इंसान कितनी जल्दी भूल जाता है, ये सोचता नहीं है कि आज अगर मुझे किसी की इख्तदार की कुर्सी पे बैठना नसीब हुआ है तो वो बंदा जो मेरे से पहले बैठा हुआ था वो देखो जब वो चला गया तो मैं भी जा सकता हूँ। अगर आज मुझे कहीं जॉब मिली है तो ये भी तो देखे कि जिसकी जगह पे मुझे आज जॉब मिली है, जिसको निकाल के मुझे आज उन्होंने रखा है, कल मुझे भी निकाल सकते हैं। औरत अगर ये सोचे कि एक घर में मैं अगर ब्याह के आई हूं तो इस घर की पहले मालकन, पहले यहाँ पे राज करने वाली कोई और औरत थी, अगर आज उसका राज नहीं रहा तो कल मेरा राज भी नहीं रहेगा। कितनी इबरत है ना। लेकिन इंसान बिल्कुल ना अपने अंजाम को सोचता है, ना अपने माजी को सोचता है, ना आगे को देखता है, ना पीछे को, बिल्कुल बेखबर होके ऐसे नशे में मस्त हो जाता है। जब कोई चीज मिलती है तब तो एक नशा सा चढ़ जाता है, कुछ समझ ही नहीं है कि सजा, बिल्कुल समझ खत्म हो गई है, एक नशे में है, ऐसे मस्त हैं कि बस कोई बताए भी ना तो सुनना नहीं चाहते। सिवाय उन लोगों के, इल्लल्लज़ीना, सिवाय किन लोगों के, इल्लल्लज़ीना सबरू, वो लोग जो सबर करते हैं, सबर क्या चीज होती है कि सबर करने वाले लोगों को ये वो एक्सेप्शनल केस है, वो नहीं ऐसा करते, उनके रिएक्शन जैसे नहीं होते। तो सबर कौन सी चीज है जो उनको इस चीज से महफूज रखती है? सबर है खुद को रोक रखना, रिएक्शनरी ना होना, ऐसा चीजों से मुतासिर या हालात से ऐसे मुतासिर ना होना कि फिर उसके बाद इंसान को की हिम्मत ही टूट जाए या इंसान को पता ही ना चले। अगर झटके भी लगे तो इतदाल पे रहे, खुद को कंट्रोल करके रखे, खुशी में भी कंट्रोल करके रखे, गम में भी कंट्रोल करके रखे। कंट्रोल अपने ऊपर करना, यही सबर, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाना। तो वो लोग जो सबर करते हैं, जब ऐसे हम आगे पीछे जो पढ़ते हैं इल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, देखिए डिफरेंट बात है ना, सबर वाले और नेक अमल करने वाले। सबर वालों के लिए है कि वो सबर करने वाले जो है ना, वो अपने आप को गम में भी थाम के रखते हैं, गम में भी अपने आप को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम तरफ नहीं चले जाते। देखिए सबर दोनों हालतों में होता है, सिर्फ गम में नहीं होता, खुशी में भी सबर होता है। गम में तो सबर सबको समझ आती है कि अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसे रिएक्शनरी नहीं करना, तो वो मायूस ही होकर बैठ गए, नाशुकरी कर ली, ऐसे नहीं। लेकिन खुशी में भी सबर है। खुशी में क्या सबर है? कि खुशी में भी अपने जज्बात को काबू में रखा जाए, आपे से बाहर ना हो जाए कि हड्डियां तोड़ने लग गए, अब अल्लाह की अहकामात का कुछ पता नहीं है। तो यहीं से पता चलता है कि ईमान किसका किस लेवल का है, ईमान किसका किस दर्जे का है। इल्लल्लज़ीना सबरू, वो जो सबर करते हैं, समझ लेते हैं जो खोना था वो तो अल्लाह की अमानत थी, जो चला गया वो अल्लाह ही का था, जो हाथ से जाना था वो जाना ही था, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब मैं अजर ना गवा, मैं हंगामा शोर बैन बाल नोचने वाय मी मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, ऐसे करके मैं कहीं अल्लाह को ना नाराज कर दूं, आए हमने तो कभी सुख देखा ही नहीं, आए सारे मसले हमारे लिए रह गए हैं, हमारी जिंदगी में ऐसे है, ये सबर के खिलाफ है। अल्लाह ताला को ये दो रिएक्शंस नहीं पसंद जो आयत 9 और 10 में है। हम कहीं ना कहीं तो लाए करते होंगे ना, आइदर 9 में या 10 में ऐसी सिचुएशन हमारे पर भी आती होंगी। क्या हम नंबर 11 में जो जिन लोगों की खसूसियात हैं, जो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, जिनके लिए फरमाया उलाइका लहुम मग़फिरतुन व अजरुन कबीर, उनके लिए बख्शिश भी है और बहुत बड़ा अल्लाह ने अजर रखा, दो खुशखबरियां उनको मिल गई, उनमें से है या ये जो 9 और 10 में है उनमें से, कितनी बड़ी खुशखबरी है। सबर करने वाले और नेक अमल करें, तो सबर अपने आप को थाम भी लो और भलाई करते रहो। देखिए नेक अमल का उसी को होश रहेगा ना जो सबर करेगा। अब भाई अगर आपे से आप बाहर हो रहे हैं तो आपको नेक अमल का, नेक अमल आमिल उसवाले हाथ में सारे फराइज भी आ गए, सारी जो अल्लाह के राजी करने की चीज आमाल है वो सब इसमें आ गए ना। अब आप मुझे बताएं कि अगर मसलन खुशी में कोई आपे से बाहर हो रहा है, उसको कोई याद रहेगा कि मेरी नमाज थी, इशा की नमाज पढ़नी थी, वो तो पार्टी में ही चली गई, और फिर इधर उधर हल्ला गुल्ला इसके करने में ही फजर भी चली गई, उसको क्या याद रहेगा कि भाई अच्छा अब हम इतने ज्यादा खुशी के अंदर हैं कि आज तो ना कोई कुरान पढ़ना है और ना कोई सीखना और ना कोई क्लास है और ना कोई कुछ है, बस आपे से बाहर जो हुए खुशी। इसी तरह गम के अंदर भी सबर अगर होगा आमिलुस सालिहात भी होगा, वरना इंसान कहता है कि सबर ही नहीं है, अगर जाहिर है अपने आप के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, तो कहता है नहीं अब नहीं, मुझसे ना नमाज पढ़ी जाती है ना मुझसे कुरान पढ़ा जाता है, मेरा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मायूसी के अंदर चला जाता या नाराज ही हो जाता है इसका फिरुल्ला। तो वो नेक काम छोड़ते नहीं है, सबर की सबर होता है तभी वो नेकियां भी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबर के बगैर इंसान की नेकियों को करने की जो कैपेबिलिटी होती है ना, अगर सबर नहीं है ना तो वो भी मुतासिर होती है, तो नहीं इंसान नेकियां कर सकता। तो ऐसे लोगों के लिए फिर दो चीजें, मग़फ़िरत और अजर कबीर। کیوں اللہ نے یہ چیزیں دی ان کو؟ اس لیے کہ دیکھو یہ کتنے پیارے لوگ ہیں، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رحمت دی ہوئی تھی، واپس لے لی، تب بھی کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، اللہ ہم تیری رضا میں راضی ہیں. صرف زبان سے الفاظ نہیں، الفاظ یہ بیان کرنے بڑے آسان ہیں، واقعی ان کا عمل شو کرتا ہے کہ وہ راضی ہیں. اور دوسرے خوشی کے اندر بھی، جب اللہ تعالیٰ خوشی بھی دیتا ہے تب بھی آپ سے باہر نہیں ہو جاتے. بعض دفعہ ہم غم میں تو سوچتے ہیں صبر کرنا ہے، خوشی میں کسی کو نہیں یاد رہتا کہ اس میں بھی کوئی صبر کی بات ہے. بعض دفعہ اس میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے گا کہ خوشی میں بھی صبر. ہم تو کہتے ہیں نا خوشی کا موقع ہے، کوئی بات نہیں کرنے دو. ہر ایک چیز کو جائز سمجھ لیتے ہیں، خوشی کا موقع ہے نا، کیا ہوا اگر اس نے ایسے بھی کر لیا، چاہے وہ کیسے بھی کپڑے پہن کے کھڑی ہو جائے عورت، چاہے وہ کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کوئی بھی مجلس آپ نے رکھ لی، کوئی بات نہیں، خوشی کا وقت ہے نا. تو ہم خوشی میں سمجھتے ہیں سب جائز ہے، ایسا نہیں ہے. یہ آیتیں بتاتی ہے کہ خوشی میں بھی جو مومن ہے، جس کے لیے مغفرت اجر کبیر ایسے ہی نہیں مل جاتا، یہ ان لوگوں کو ملے گا جو خوشی میں بھی خود کو کنٹرول کریں گے، خوشی میں بھی باؤنڈریز کراس نہیں کرتے، کہتے ہیں لمٹس میں رہو بھائی، خوشی ہے اللہ نے دیا نا، ایسے نہ کرو کہ کل کو اللہ تعالیٰ چاہے تو خوشی واپس لے لے. ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے. اب ان میں خود کو ہم نے شامل کرنا. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے حوصلے دے، اتنے طاقت دے کہ واقعی ہم ایسے مواقع پر اپنے آپ کو ان لوگوں میں کر سکیں جن کا یہاں پہ ذکر آیا. کیونکہ یہ آسان بات نہیں ہے، صبر کرنا بھی نہیں آسان بات، اور صبر کر کے پھر صالح عمل کرنا بھی نہیں آسان بات. خود کو باندھنا، صبر باندھنا، روکنا، جو اپنی ناجائز خواہشات ہیں اس کو، اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر ہے. یہ آسان نہیں ہے، بے شک آسان نہیں، مگر پھر جس کو اجر بڑا چاہیے نا اور مغفرت چاہیے، پھر اس کو یہ کرنا پڑے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر حال میں ہی خیر ہے. یہ مومن کے سوا کسی اور کو نہیں ملتا. اگر اس کو راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، شکر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. اگر مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. مسلم کی روایت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے کم کوئی چیز چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب بھی اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے. تو پھر ایسا بندہ تو صبر کرے گا ہی نا. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا نا جن کے کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے. مومن سب مومن نہیں ہوتے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو درد بھی ہوتا ہے، یا تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، یا اگر بیماری ہوتی ہے، یا کوئی غم ہوتا ہے، یا فکر ہوتا ہے، یا پریشانی ہوتی ہے، اللہ اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. یہ بخاری میں ہے، مسلم میں. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے، کہ بڑی مصیبت کا بڑا اجر ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے، کسی قوم سے، تو ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. جو اس سے راضی ہو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جو اس سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اپنی ناراضگی سے. اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. اللہ محبت کرتا ہے نا تو ٹیسٹ کر لیتا ہے. محبت کہتے نا آزمائش مانگتی ہے. جو محبت کرتا ہے وہ کہتا ہے آزما کے تو دیکھو واقعی میرے سے یہ جو محبت میں یہ قابل بھی ہے کہ نہیں. اللہ آزما کے دیکھتا ہے، دیکھتا ہے کون مجھ سے پھر بھی راضی رہتا ہے. پھر حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ مومن اور مومنہ پر اس کی جان میں، یعنی اس کی اپنی 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 پرسنل لائف میں، اس کی اولاد میں، اس کے مال میں مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اس حال میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے کہ اس کے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. ترمذی کی روایت ہے. اللہ اس کو اتنا کلین کر دیتا ہے ان مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے اور غموں سے کہ وہ زمین پہ چلتا ہے نا تو سن لیس، کوئی چین نہیں ہے اس کے پاس. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب مصیبتوں میں مبتلا ہونے والوں کو ثواب دیا جائے گا نا، تو آرام کرنے والے دنیا میں اور آسائشوں میں رہنے والے دنیا میں وہ کہیں گے काश दुनिया में हमारी खालों को कैंचियों से काट दिया जाता ताकि हम सबर करते और हमें भी आज अचर मिलता। वो एनवी करेंगे, देखेंगे, रश करेंगे, अल्लाह इनको इतना अजर मिल रहा है, इन्होंने मुसीबतों पे सबर किया था, ये सबर का अजर। वो कहेंगे कि काश हमें इतनी तकलीफ होती कि हमारी स्किन काट दी जाती कैंचियों से। अल्लाह अकबर। तो इन आयतों को हाईलाइट कर लें, हम इनको पढ़ते रहें और ये रिमाइंडर्स हैं हम सबके लिए, हम सबके लिए, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स जब लाइफ में आते हैं ना, तो ऐसी चीजें ये हमें ढारस देती है, क्योंकि शैतान बड़ी जल्दी इंसान को मायूस कर देता है। शैतान कहता है नहीं अब कुछ नहीं हो, कोई होप नहीं है, इतना गमगीन कर देता है कि इंसान कुछ करने के काबिल नहीं रहता, उसको कोई खैर नजर ही नहीं आती, उसको लगता है कि बस खत्म हो गया सब। वो उसको दुआ से भी मायूस कर देता है, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल से भी मायूस कर देता है। इसी तरह शैतान इंसान को खुशी में भी आपे से बाहर कर देता है। तो इसलिए ये दो स्टेट्स जो हैं, एक छिनने की और एक अता होने की, दोनों टेस्ट हैं, मिलना भी टेस्ट है। तो इंशाल्लाह इनको हमने याद रखना। सलाल्लाह का तुहारिकुम बादमा युहा, तो शायद के तुम छोड़ने वाले हो बाज हिस्से को इसका जो वही किया गया। अब यहाँ से एक और बात शुरू होती है, इसको पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इतनी बातें सुनाते थे, इस कदर तंग करते थे, आप देखें कि इस वक्त का बिल्कुल ये एंड का पीरियड है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातों से इतना दिल तंग होते थे ना। अब उस ऐसे हालात में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये आयात नाजिल की। इसका मतलब ये नहीं है कि शायद कि आप छोड़ने वाले बास हिस्सा वही का, यानी आप बयान नहीं करेंगे इनकी बातों की वजह से, ये नहीं कहा जा रहा, क्योंकि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सब कुछ जो भी था वो बयान कर दिया, कुछ भी नहीं रखा। काफिरों की जुबान और उनके तानों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज छुपाई नहीं। हालांकि वो कभी कहते थे ये कैसा रसूल है, खाना पीना खाता है और ये और बाजारों में फिरता है, और इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं है जो इसका बॉडीगार्ड बनता, कोई खजाना क्यों नहीं इसको दिया जाता, और इसके पास कोई बाग होते, कोई ये होते, हमें पता चलता कि ये कोई अल्लाह का खास रसूल है, उसका मैसेंजर है, तो ये तो इस तरह से आम सा इंसान है, तो ये तो कोई रसूल नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक इस्तफहाम इंकारी, जिसको हम कहते हैं ना, जैसे कि मैं कहती हूँ अगर मसलन मैं आपको कहूँ क्या अल्लाह आपको अकेला छोड़ देगा, इसका क्या जवाब है, नहीं अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या अल्लाह आपको अकेला छोड़ देगा, नहीं ये नहीं सवाल नहीं है ये, यानी उसके अंदर ही ये जवाब है कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अल्लाह आपको क्या अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगा, यानी करेगा। तो ये क्या होते हैं, ये क्वेश्चन नहीं होते, ये इन इट सेल्फ एक बात को बताने का तरीका है, ठीक है ये समझ। तो यहाँ पे यानी इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है कि आप छोड़ दें वही का कुछ हिस्सा बताने से, यानी जब सख्त तरीन हालात हैं। अब सख्त तरीन हालात में हम क्या सोचते हैं, जब सख्त तरीन हालात हों तो उस वक्त क्या होना चाहिए, क्या ख्याल है आपका, हमारे दिमाग में आता है कि अब बहुत यानी कुछ भी बातें ना करी जाए, सही बात ना बताई जाए, आए कहीं किसी को ऐसा ना लग जाए, वैसा ना लग जाए, कुछ छुपा लिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जा रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कुछ बात छुपा लें, यानी इनसे डर के अल्लाह की वही में से कुछ छुपा लेना ये आपके लिए तो मुमकिन ही नहीं था ना। लेकिन जो भी दाई दीन है उसके लिए भी एक मैसेज है, यानी कितने भी हालात सख्त हों, कितने भी मुश्किल हालात हों, ये नहीं करना कि वही में से कुछ पोर्शन छुपा लेना कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, ऐसे नहीं कर सकते। दिस इज द प्राइस जो एक दाई को पे करनी पड़ती है, ये हक कहना ही है, वो जो भी है उसको लाना ही है सामने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, और उसके बाद हर एक को ये बात समझ लेनी चाहिए जो भी दीन का काम करने वाला है। फला अल्लाह कहता तैयारी कुन बाद अमा यू है, तो कैसे हो सकता है? शायद कि तुम छोड़ने वाले बास हिस्सा वही का जो आपकी तरफ इलाइका आपकी तरफ नाजिल किया जाता है, जो आपकी तरफ वही की जाती है, यानी ये कुरान का कुछ हिस्सा आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप छुपाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि इनको पसंद नहीं आएगा और आप इनको ना सुनाए, ऐसा नहीं हो सकता। और वदायकुन बिही सदरुक, और तंग होने वाला है आप इससे आपका सीना, यानी इनकी बातों से आपका सीना तंग होता है, इनके क्रिटिसिज्म से, इनके मजाक उड़ाने से, इनके ठट्टे करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तंग होता था, ये क्यों ऐसी बातें करते हैं? तो क्या वो बातें करते थे? अयकुलू के वो कहते हैं लौला उन्जिला अलैहि कंज़ुन, ये जो मैंने आपको भी बात बताई, क्यों नहीं इसके ऊपर कोई खजाना नाजिल होता? औ जा माहू मलक, या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आता? तो अल्लाह ताला ने बताया कि लोग तो बातें बना रहे हैं, ये तो बनाते रहेंगे, ये तो कहते हैं ये तो फकीर है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसके पास तो कोई बॉडी गार्ड नहीं, इसके पास तो ऐसे नहीं। तो आप बता दें इन्नमा अंत नदीर, बेशक आप तो खबरदार करने वाले हैं, आप उनको ये बता दें कि भाई मैं तो सिर्फ एक वार्निंग देने वाला हूँ, एक पैगाम पहुंचाने वाला हूँ, यानी आपको एक तसल्ली दी गई कि आपका काम ये थोड़ी है कि इनको बादशाहते लाला के दिखाएं, ये खजाने तो बादशाहों के पास होते हैं, बादशाहत अलग चीज है, नबूवत अलग चीज है, उनको दोनों का तो कोई मैच ही नहीं है। तो इनकी बातों से आप दिल तंग ना करें, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन वकील, अल्लाह ताला हर चीज पे कारसाज है, यानी आपका काम बस ये है कि आप इनको वार्निंग दें, अगर ये मुखालफतें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, आप मुझ पे छोड़ दें, अल्लाह ताला के हवाले है हर चीज, वो हर चीज का कारसाज है, वो खुद ही हिसाब ले लेगा। हम यकूलून तरा, क्या वो कहते हैं कि इसने घर लिया इसको, यानी ये कह रहे हैं ना ये कुरान खुद ही बना के ले आया, ये भी तो कितनी एक इल्जाम वाली बात थी, और एक ऐसी बात थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को कितनी तकलीफ देती होगी, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये तो खुद ही बना के ले आए, हमें कोई बात कह दी जाए इस तरह की कोई मामूली सी बात है, तो खुद ही घड़ घुड़ के बातें बनाती रहती है, तो हमें कितना गुस्सा है, ये तो अल्लाह के कलाम के ऊपर इतनी बड़ी ऑब्जेक्शन। कुल, आप कहते हैं अच्छा फिर मैंने अगर बनाई है ना, हाँ तो भी आयशरी सुवरिन मिसली ही, तुम भी ले आओ फिर 10 सूरतें इसकी जैसी, मुफ्तरियात घड़ी भी, तो ठीक है अगर मैंने बनाई है तो तुम भी ले आओ, इसका मतलब अगर इंसान बना सकता है तो फिर तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, तुम भी ले आओ। ये कुरान का खुला चैलेंज है रहती दुनिया तक कयामत तक, कि कुरान इनवाइट करता है कोई है इस दुनिया में जो इस जैसा कलाम ले आए, ये आज तक है चैलेंज, आप दावा भी करें ना लोगों को बताएं ये कि कुरान ये चैलेंज करता है, कोई और किताब ये चैलेंज नहीं करती, किसी और ऑथर को ये आज तक नहीं देखा कि उसने अपनी किताब में ये लिखा होगा, ऐसी किताब कोई ले आए, ऐसी लिखाई को ले आए तो फिर मैं मानूं उसको, कोई नहीं कर सकता ये दावा, सिर्फ अल्लाह ताला की ताकत है वो ये दावा कर सकता है, ये चैलेंज है कुरान का, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, सूरह बनी इसराइल में भी उसने ही कहा गया कि आप कहें कि अगर तमाम इंसान और जिन मिलके इस कुरान के मिसल लाना चाहें तो वो इसकी मिसल नहीं ला सकते, बनी इसराइल आयत 88 में, और सूरह तूर में तो ये है फल यातू बि हदीसिन मिस्लिही इन कानू सादिकीन, इस जैसी एक ही बात ले आओ अगर तुम सच्चे हो तो, और फिर सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा कि ला सकते हो तो एक भी सूरत ले आओ, तो ये आज तक ये चैलेंज कोई यानी इसको वो नहीं कर सका, इसका जवाब नहीं दे सका। लबीब ने तो शायरी छोड़ दी थी, बहुत बड़ा शायर था अरब का, जिस दिन सूरह कौसर पढ़ी थी उसने, ये वाकई ये इंसान का कलाम नहीं है, किसी और जात का कलाम है, इंसान ऐसा ला ही नहीं सकता। और फिर सिर्फ ये इतना चैलेंज नहीं किया दिया गया, वदउ मन इस्ततातु, पुकारो जिसको तुम इस्ततात रखते हो, यानी तुम अपने सारे इंटेलेक्चुअल्स को जमा कर लो, जिन्नों को जमा कर लो, सब इंसानों को, साइंटिस्ट को, लिखारियों को, हर ऑथर को, हर एक को जमा कर लो, मिन दूनिल्ला, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा सब जमा हो जाए, चाहे फरिश्ते हैं चाहे कोई भी, जितने तुम्हारे अकलमंद लोग हैं सब जमा कर लो, इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, ले आओ ऐसी 10 सूरतें। अब देखो सूरह बकरा में एक सूरत भी लाने को कहा गया, एक भी ले आओ, यहाँ पे 10 का कहा गया, एक किस जगह कुरान लाने का कहा गया, तो अगर तुम ये कहते हो ना कि ये इन्होंने खुद ही बना लिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका कलाम है, तो फिर तो इंसानी कलाम हुआ ना, फिर तो ठीक है तुम भी ला। फइल्लम यस्तजीबू, फिर अगर वो नहीं जवाब दें तुमको, यानी वो नहीं अगर लेकर आते, फालम तो जान लो अन्नमा उन्जिला बिइल्मिल्लाह, कि बेशक ये तो फिर अल्लाह के इल्म के साथ ही नाज़िल हुआ ना, फिर ये अल्लाह का कलाम है। अगर तुम नहीं ला सकते तो फिर मान जाओ ना कि ये अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि अगर ये इंसानों का होता तो फिर तुम सारे मिलके तो कुछ ना कुछ ला सकते। वाला इलाहा इल्लाहू, और ये कि नहीं कोई इलाह मगर वो ही। तो ये कुरान की ऑथेंटिसिटी और अल्लाह की तरफ से होने का सबूत है कि इस जैसा कोई कलाम नहीं ला सका आज तक। अरब ने ऐसा नहीं कि आज ही कोई कुरान की मुखालफत शुरू हुई है, अरब मुशरिकीन है मक्का बड़े मुखालिफ थे, और वो तो मैंने आपको बताया ना, अपने आप को अहले जुबान आजम सारों को कहते थे ये अजमी है, हम हैं जो पढ़े लिखे और हम हैं जो सारे जुबान दान है, दूसरों को तो कुछ समझते ही नहीं थे, वो नहीं ला सके। आज भी अगर कोई चाहे, ये खुला चैलेंज है कुरान का, लेकर आए। फहल अंतुम मुस्लिमून, तो क्या तुम सरे तस्लीम खम करने वाले हो, फिर क्या तुम मान जाने वाले हो, फिर क्या तुम मान जाओगे जब तुम्हें ये पता लग गया कि ऐसा कलाम लाने की किसी में कुदरत नहीं है, तो फिर मान जाओ ना कि अल्लाह का कलाम है। क्या फिर अब तुम सर झुकाते हो? ये काफिर के लिए भी है कि वो भी सरेंडर करे, सबमिट कर दे अल्लाह के सामने, मान जाए इसको अल्लाह का कलाम। और अगर कोई मुसलमान कोई शकूक व शुबहात रखता है, पता नहीं है भी कि नहीं, पता नहीं अल्लाह की बात है कि नहीं, वो भी फिर अगर इस चैलेंज का जवाब नहीं कोई ला सकता तो फिर मान जाना चाहिए। मन काना युरीदु हयात दुनिया, जो कोई इरादा रखता है दुनिया की जिंदगी का, और यहाँ पे इरादा हमने उर्दू में तो बोला इरादा रखना, मगर यहाँ पे क्या आया, युरीदु, जो कोई चाहता है दुनिया की जिंदगी को, और इसके अंदर यानी कंटिन्यूटी एक आ गई कि यानी जो दवाम है इसमें इस्तमरार है कि इरादा करता रहा, यानी ऐसे ही उसको हमेशा वो दुनिया ही चाहता रहा हमेशा उसका यही, एक दफा नहीं किया वो, उसकी लाइफ ही इसके गर्द घूमती थी कि वो बस दुनिया ही चाहता है, दुनिया मिले, इसी के लिए अमल करता है, इसी के लिए सारा कुछ करता है। वह जीना कहा, और इसकी जीना, जो कोई इसकी जीनत चाहता है, यानी इसकी डेकोरेशन, इसकी ब्यूटी, और इसकी ब्यूटी क्या है, चाहे वो जिस्मानी जीनत हो, चाहे माल भी जीनत है, औलाद है, और यहाँ की जो भी लग्जरीज हैं, वो सब जीनत है ना इस दुनिया की जिंदगी की। तो वो जो कोई इस दुनिया की जिंदगी की बस जीनत ही चाहता है, वो फील आम आला होती है, तो वो फिक्र ना करें, हम उसको यहीं पे दे देंगे उसके सारे आम, इसको यहीं पे दे के फारिग करेगा अल्लाह। अगर तुमने अपनी जिंदगी का मकसद बस यही बना लिया ना, हाय दुनिया मिल जाए, ये मिल जाए, ये रख रखाव, गाड़ी कार ना, उसके पीछे हलकान हो रहे हैं, उसके पीछे कुछ पता नहीं है कि मैंने कोई आखरत भी है, मैंने कोई अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, बस घर ऐसा हो जाए, कपड़े मेरे ऐसे हो जाए, फला डिजाइनर का हो, फला ये हो, बस सारी जिंदगी इनकी इसी एक सेंटर की गिर्द घूमती है कि दुनिया दुनिया दुनिया। हाँ, कभी आपने देखे ऐसे लोग, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं है जो कहेगा कि नहीं देखे, कि बस ये इंसान का फोकस हो, ये उसकी डायरेक्शन हो, ये इसी के पीछे वो भागता जा रहा। तो फरमाया कि जो ये चाहता है ना, सिर्फ दुनिया का तलबगार है, यहाँ पे उसको सब जो भी अल्लाह ने देना होगा ना यही मिल जाएगा। देखिए दुनिया की तलब ना किसी दर्जे में तो हर एक के अंदर होती है, मगर एक वो होता है ना जिसकी बस मकसद ही ये है, जो आखिरत को बिल्कुल ही भूला हुआ है, ठीक है मुंह से कह भी अगर देगा, ये सिर्फ काफिर के लिए नहीं है ये बात कही जा रही। मन काना, जो कोई भी, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो काफिर है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, जो भी, बस इसको ही अपनी पर्पस ऑफ लाइफ यही बना लेगा कि ये मुझे मिले और इसकी जीनत। इसीलिए देखें एक दुआ भी है, मसनून दुआ में बड़ी प्यारी दुआ है, और उसके बीच में लंबी दुआ के बीच में है बात एक लात अजाल दुनिया अकबर हम मिना, या अल्लाह इस दुनिया को ही मेरा सबसे बड़ा गम ना बना देना कि मैं इसके पीछे हलकान होती रहूं कि यही मेरा गम और हम और गम बस यही बन जाए, ऐसा ना हो तो बस दुआएं भी हैं तो बस दुनिया दुनिया दुनिया, अच्छा फिक्र भी है तो बस दुनिया दुनिया दुनिया, कुछ सोना है तो दुनिया का सोच के, उठना है तो दुनिया का सोच के, कोई वहां की तो बस है नहीं, वो तो अल्लाह के वाले किया हुआ, अगर आखिरत आएगी तो देखी जाएगी भाई। अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला कहते हैं बस फिर सब कुछ तुम्हें यही मिल जाएगा फौरी नतीजा, लेकिन फिर क्या है वहम फीहा ला युखासून, और वो इसमें कमी नहीं की जाएगी, यहाँ पे कोई कमी नहीं की जाएगी, तो तुम्हें जितनी अल्लाह ने देनी है वो यहीं पे दे देगा। लेकिन उलाई कल्लदीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्लन नार, ऐसे लोगों के लिए फिर आखिरत में सिवाय आग के कुछ नहीं है। इससे पहले भी हमने सूरह बकरा में पढ़ा था ना, फमिन अन्नासि मन यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहुम फिल आखिरति मिन खलाक, उनके लिए आखिरत में भी कोई हिस्सा नहीं है। वो कहते हैं ना बस अल्लाह हमारी दुनिया हासिल ना कर दे, अल्लाह बस हमारी, तो फिर ठीक है तुम्हें अगर दुनिया ही चाहिए बस, आखरत के लिए ना तुम्हारी कोई कोशिश है ना तुम्हारी कोई ख्वाहिश, ऐसे ये तो सारे कह देते हैं बस वहां पे भी जन्नत मिल जाए, लेकिन सेंटर ऑफ अटेंशन आपका फोकस आपका जहन आपकी सारी सलाहियतें बस यही लग रही है ना, तो बस ये मिल जाएगी दिन रात इसके लिए अगर एक किए में ना तो ये मिल जाएगी, हम दे देंगे क्योंकि तुम्हारी चाहत यही है, जैसी परफेक्शन तुम चाहते हो वैसी ना सही अल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो दे देगा, उनको मिल जाता है, लेकिन आखरत में फिर आग के सिवा कुछ नहीं। क्यों आग के सिवा कुछ नहीं, इसलिए इन्होंने कहां आखरत में कुछ मांगा या कहां उसके लिए कोशिश की या कहां उसके लिए कोई स्ट्रगल की या कहां उसके लिए कोई ख्वाहिश, देखिए जिस चीज की आपको ख्वाहिश होती है ना फिर आप उसके लिए स्ट्रगल करते हैं कोशिश करते हैं, अगर आपको ख्वाहिश है घर बनाने की तो उसके लिए आप पैसे जोड़ते हैं ना, ये नहीं होता कि आप कहें कि मुझे ख्वाहिश बहुत है कि मैं अच्छा खाना खाऊं लेकिन मैंने करना कुछ नहीं, ऐसे नहीं करते। अगर जिसको आखरत चाहिए होगी वो उसके लिए कोशिश करेगा, इनकी सारी कोशिशें दुनिया के लिए लग गई तो देखो इनके लिए क्या है, आखरत में कुछ भी नहीं है। और ये एक बहुत हमारे लिए यानी एक वेकअप कॉल है, क्योंकि हम अपने इर्द के हर तरफ देखते हैं ना कि एक ही दौड़ है, एक ही दौड़ है, हर कोई दुनिया के पीछे भाग रहा है, तो अल्लाह ताला ने उसका बता दिया कि तुमने इसके लिए स्ट्रगल किया, तुम इसके लिए भाग दौड़ करते हो, चाहे कोई नेकियां भी कर रहा है, इसलिए बाज दफा हम ये सोचते हैं हम बड़े दीन का काम कर रहे हैं, हालांकि उस वो दीन का लेबल होता है बस, अंदर फिर दुनिया ही होती है, मसला ना है कि बस ऐसी ऐसे काम कर लिए जिसमें शो है जिसमें लोग तारीफें करें, तो वो क्या है, लेबल दीन का लगाया हुआ लेकिन अंदर तो दुनिया ही है ना, ये ख्वाहिश है बस इसकी जीनत मिल जाए, ये जीनत ये भी है तारीफें जो लोगों की, लोगों से मिलने वाले फायदे, अब ये लेबल लगा दिया दीन का और जी हमने एक तकरीब कर लिया उसमें जो उनको बुला लिया जो आके ये पढ़ेंगे वो उसके ऊपर से पैसे वार रहे हैं कर रहे हैं, तो बस ये भी दुनिया की जीनत है, ये दीन नहीं है। और बाज दफा ये भी होता है पूरा साल कोई कोई अल्लाह ताला का हुक्म नहीं, कोई सबमिशन नहीं, कोई अल्लाह से ताल्लुक नहीं, वो नमाजों का कोई ख्याल नहीं, अब जैसी तैसी कर ली, साल में एक दफा घर में दर्ज कर लिया, खूब बच्चा खाना खिला दिया, बस दर्द देने वाली को कुछ उसको भी चढ़ा दिया कुछ, और अगले पूरे साल के लिए ये काफी है बस, इससे क्या जिंदगी बदली, क्या हुआ इससे, कुछ नहीं, हाँ बस जाहिरी चकाचौंध हो गई, एक लेबल लगा दिया कि दीन का भी हमने कुछ कर लिया, या कोई बड़ी अपने मरने वाले के ऊपर कोई बड़ी शानदार बरसी मना ली, वाह वाह हो गई, तो बस ये हमारा दीनदारी हो गई, ये तो दीनदारी का लेबल है, अंदर इसमें भी दुनिया ही की जीनत है जो चाहिए। हमने वो हदीस पहले भी पढ़ी थी कि जो शहीद और जो आलिम और जो सखी क़यामत के दिन लाया जाएगा, और वो हालांकि शहीद हुआ, हालांकि वो आलिम इल्म देता रहा दीन का लोगों को सिखाता रहा, हालांकि ये सखी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहा, लेकिन नीयतें दुरुस्त नहीं थी, नीयतों में सिर्फ ये था लोग मुझे शाबाशी दें, लोग मेरी खुशामदे करें, लोग मुझे अच्छा कहें, तो उस दिन क्या होगा, جہنم میں سب سے پہلے ان کو جھونکا جائے گا. تو یاد رکھیں یہ زینت کے اندر نا یہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں. زینت میں آپ صرف یہ نہ سمجھیں گے ہم لوگوں کو پیسوں کا یا کپڑوں کا یا زیور کا یا گھروں کا شوق ہوتا ہے اور وہ زینت ہے. یہ بھی زینت ہے. بعض لوگ دین کے نام کے اوپر وہ بھی دنیا ہی سمیٹنے میں لگے ہیں اور اس کی زینت چاہتے ہیں. یہ دنیا کی بیوٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ایسی بیوٹی ہم دنیا میں دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے تعریفیں ہو گئی تمہاری, ٹھیک ہے تو لوگوں نے تمہیں اچھا کہہ دیا, لوگوں نے تمہیں بہت بڑا عالم کہہ دیا, لوگوں نے تمہیں بڑا پوجا, بہت تمہاری تعریفیں کی, ٹھیک ہے وہاں پہ مل گیا, اس میں تو کوئی کمی نہیں کی ہم نے. لیکن آخرت میں نا کچھ مانگنا آگے نہیں کچھ ملنا. تو چاہے آپ حیات دنیا و زینت ہا کو چاہے آپ اس کیٹیگری میں دیکھ لیں جو بالکل دنیا دار اور بالکل اس کے اندر سیلف سینٹرڈ ایک زندگی گزارتے ہیں اور بس دنیا ہی دنیا ہوتی ہے, یا آپ اس دوسرے سینیریو میں دیکھ لیں اس میں بھی دنیا ہی دنیا ہے صرف لیبل دین کے لگے ہوئے, اس میں بھی یہی ہے, دونوں میں یہ جاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے آخرت میں آگ کے سوا, حبط ما صنعوا فیہا, اور ضائع ہو گئے جو انہوں نے کیے اس میں, جو وہ دنیا میں کام کرتے رہے. ایک وہ دنیا دار لوگ ہیں اس نے تو کیا ہی اتنا ٹائم لگایا گھروں پہ اس پہ, بس گھر کھنڈر بن گئے, وہ کپڑے جو ہیں وہ کہیں تھیلوں میں ڈال کے وہاں پہ گاربیج میں پھینک دی ہے, وہ جسم جس کو اتنا بیوٹیفائی کیا ہوا تھا زینت اس کو بھی دی ہوئی تھی, وہ بالکل بڑھاپے کی اس کو پہنچ گیا کہ اپنے آپ کو بھی دیکھنے کا دل نہیں چاہتا, وہ تصویریں اور وہ اپنے فوٹو سیشنز ان کو کسی نے بھی نہ پوچھا, وہ فریم بھی بک رہے ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر, بچے بھی اٹھا اٹھا کے پہن دیتے ہیں, سب ضائع ہو گیا. وہ بڑی بڑی ڈگریاں وہ سب ضائع, دیمک چاٹ رہی ہے ان کو. اور وہ تعریفیں جو لوگ کرتے تھے وہ لوگ بھی نہ رہے نہ وہ تعریفیں رہیں, وہ تو دو منٹ کا وہ تھا اور بس وہ ختم ہو گئی. دنیا میں جتنا انہوں نے سمیٹا تھا نا وہ سب رونقیں وہ سب زینتیں وہ سب وہیں رہ گئی, سب ضائع ہو گئی. اور اسی طرح کوئی دین کے نام پہ کچھ کرتا ہے وہ جو کام کرتا ہے وہ بھی سب ضائع ہو گئے, کیونکہ اس کا اجر ان کو کچھ نہیں ملے گا, سب ختم ہو گیا. وہ جو لوگوں کو بڑے بڑے واز کیے تھے تعریفیں لینے کے لیے وہ ان کو ملٹی پلائی وتھ زیرو ہو گئے, ان کا کوئی اجر نہیں. تو حبط ہفتے اعمال ہو گیا, اس سے بہت ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہفتے اعمال سے ہمیں محفوظ رکھے, اعمال کے ضائع ہونے سے. بعض دفعہ انسان چیریٹی ورک بھی کرتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کئی بہت رچ لوگ ہوتے ہیں بہت ہسپتال بنائے ہوئے ہیں یہ بنایا ہے وہ, لیکن اس میں کیا نیت ہے کہ ٹیکس سے ہم بچ جائیں یا لوگ ہمیں چلو اچھا کہیں یا ہمارا نام ہو جائے کہ یہ جی بہت کرتے ہیں لوگوں کا, غریبوں کا بہت کرتے ہیں تو اس لیے ہمارا ہو جائے, یا ہم ووٹ لے لیں کل کو ہم سیاست میں کھڑے ہوں گے. تو وہ جو انہوں نے سبیلیں لگائیں یا انہوں نے مریضوں کی خدمت کی یا انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا یا انہوں نے اسپتال بنایا وہ سب ضائع, حالانکہ کتنا نیکی کا کام تھا. اللہ اکبر. وباطل ما کانوا یعملون, اور باطل ہو گئے. یعنی باطل کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو, بیس لیس چیز, کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. وہ سارے اعمال جو بڑی نیکیاں سمجھ کے بھی کیے تھے سب باطل ہو گئے, یعنی ان کا کوئی سیلا نہیں ملے گا. تھے تو وہ نیکی کے, اب کتنے بھی برے کوئی آدمی ہوتے ہیں نا وہ نیکی کا کچھ نہ کچھ کام چیریٹی ورک ضرور کر دیتے ہیں, کبھی کینسر کے آرگنائزیشن کو کچھ دے رہے ہیں اتنا ڈونیشن دے دیا, کبھی آرفنز کے لیے کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ, لیکن اگر ایمان نہیں ہے باطل, اگر ریاکاری آ گئی باطل, اگر صرف دنیا کی زینت کے لیے کیا باطل. اللہ اکبر. افمن کان علی بینت, کیا بھلا وہ آدمی, اب یہاں پہ نا دو لوگوں کا آپ کمپیرزن دیکھیں گے, کیا وہ جو بینہ پہ ہو میرے رب ہی اپنے رب کی طرف سے, یعنی بینہ کیا ہے, اس کی بھی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ آپ کو تفاصیل میں ڈفرینٹ ملیں گی, مگر ایک صرف ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بینہ کیا ہے, یعنی ایک انسان کی فطرت, فطرت کے اندر ہے نا توحید, توحید کے اوپر ہر انسان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب انسان فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں, یعنی توحید, توحید پہ پیدا ہوتے ہیں ہر ایک, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں. تو अफमन काना आला बैयना थी मेरा भी एक बंदा फितरत पे पैदा हुआ, अब उसकी फितरत करप्ट नहीं होती। अब क्या होता है वयतलू शाहिदुम मिनहु, और पीछे आता है उसकी एक गवाह, उसे उसके पास एक गवाह भी आ जाता है। यानी पहले उसकी फितरत भी सही थी, उसके बाद उसके पास एक गवाह भी आ गया। वो गवाह कौन है? कुरान। कुरान भी हो सकता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी हो सकते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो सकते हैं, कि एक गवाह आ गया जिसने गवाही दी कि ये सच्ची, ये सच्चा कलाम है और ये सच्चा दीन है। तो उसको बाहर से भी शहादत मिल गई, एक एक गवाही उसके अंदर थी ना दिल में, एक बाहर से मिल गई। और फिर वमिन कबली ही किताब मूसा इमाम व रहमा, और इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब रहनुमा भी थी और रहमत भी थी। यानी वो किताब भी जो पहले मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरी थी, जिसे अल्लाह ने उस जमाने की उम्मत के लिए रहनुमा बनाया था, जो अल्लाह की तरफ से रहमत थी, वो किताब भी गवाही देती है। या वो किताब भी गवाही देती है। तो तीन गवाहियां हो गई। एक गवाही इंसान के अपने अंदर, वो गवाही करप्ट नहीं हुई, वो उस पर ही पैदा हुआ था। एक गवाही बाहर आ गई, अल्लाह ने पैगंबर भेज दिया। फिर एक गवाही वो हो गई जो जो पिछली किताबों से मिल गई। तो ये तीन गवाहियां हो गई, रब की तरफ से कुरान या नबी आके और पिछली किताब में ये बता रही हैं कि ये कुरान हक है, ये वही हक है, नबी ने आके बताया ये वही हक है, रिसालत हक है। तो ये प्रूफ्स हैं, सबूत हैं। अच्छा आप देखिए ना, जब भी अदालत वगैरह भी होती है तो एक सबूत होता है, ये क्या कहते हैं कि ये सबूत है, इसका एविडेंस है, और एक गवाह होता है, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर मुकदमे होते हैं ना। तो यहाँ पे देखें, सबूत चाहिए तो सबूत भी मिल गया, पिछली किताबें सबूत है, गवाह चाहिए गवाह भी मिल गए। तो ये इंसान क्या ये हक पे है, या आगे भी बात हो सकती है, आगे भी बात आएगी। उलाय का युमिनूना भी, ऐसे लोग हैं जो ईमान लाते हैं इस पे, इस दीन पे, इस पैगंबर पे, इस कुरान पे। जिनके पास कुरान आ गया उन्होंने उसको भी माना, वो अपनी किताब को भी मान रहे थे पहले, और उनकी उनकी फितरत भी सलीम थी, फितरत भी सही थी। वमई अकफर भी, और जो कोई कुफर करेगा इसका, जो इसका इनकार करेगा कुरान का, या इसके किसी हिस्से को नहीं मानेगा, या इस रसूल को नहीं मानेगा, मिनल आजाब, आजाब में से, यानी इन चाहे वो कोई भी ग्रोहों में से, यानी चाहे वो मुशरिकीन मक्का हो, चाहे वो अहले किताब हो, यहूदी नसरानी कोई भी हो, किसी रंग शक्ल का हो, उसको कुरान पहुंचा और उसने नहीं माना, फन्नारु मौइदु, तो आग उसकी वादागाह है, आग उसका ठिकाना है। ये आयत बताती है कि जो अब कुरान के आने के बाद उसको नहीं मानता, उसका अंजाम क्या है, जबकि इस कुरान की गवाहियां देने के लिए क्या क्या चीजें मौजूद हैं। इंसान के अंदर नूरे फितरत है, जिसपे अल्लाह ने उसको पैदा किया तौहीद के ऊपर, उसी का पैगाम लेकर एक नबी आया, वो गवाह है, पहली किताब गवाह है। जो इन सारी गवाहियों को देख लेता, फिर वो ईमान ले आता है वाकई सच्चे दिल से कुरान पे, या ही की जमीर नबी की तरफ भी जा सकती है, नबी पे। लेकिन जो कोई कुफर करेगा ना इस कुरान का या इस नबी का, दोनों इंटरप्रिटेशन है, तो चाहे अब वो अहले किताब हो या कोई भी हो, आग उसका ठिकाना, किसी भी इलाके का हो, किसी भी जमाने में हो, किसी भी रंगो नस्ल का हो, कुरान के किसी हिस्से का भी इनकार करने वाला, चाहे वो अपने आप को मुसलमान ही क्यों ना कहता कि मैं मुसलमान हूं लेकिन मैं कुरान का ये हिस्सा नहीं मानता, वो जहन्नम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस रात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस उम्मत में से, यानी अब मेरे बाद आने वाले जितने लोग हैं, एक तो उम्मत हुआ ना जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल किया, मान लिया, और बाकी भी जितने भी लोग हैं, इस उम्मत में से जो भी मुझे सुन ले और फिर मुझ पर ईमान ना लाए, वो जहन्नमी है। समझ आई? अगर सईद बिन जुबैर फरमाते हैं कि जो भी मैं सही हदीस सुनता था ना, उसकी वेरिफिकेशन के लिए मैं कुरान जरूर देखता था और उसमें उसकी वेरिफिकेशन पाता था। तो कहते हैं जब ये हदीस मैंने सुनी तो मैंने इसको तलाश किया कि इसकी तस्दीक कुरान में किस आयत से होती है। तो मुझे ये आयत मिली कि तमाम दीन वाले इससे मुराद हैं, जितने भी दुनिया में दीन हैं, जितने भी फिरके हैं, जितने भी आजाब हैं, कोई भी अगर कुफर करेगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जैसे मैंने हदीस में बताया कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुन ले फिर ईमान ना लाए, तो जहन्नमी है। फला तकुफी मिर्यतिन मिन, तो आप ना होना किसी शक में इससे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शक नहीं करना था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए लोगों को बताया गया, आम इंसानों को समझाया जा रहा है कि आप इसमें शक ना करना कभी भी। शैतान शकूक डालता है दिलों में। इन्नहु लहक्कु मिन रब्बिक, ये बात सच्ची है, हक कहते हैं रब की तरफ से। अब ये बातें पढ़नी इतनी जरूरी है क्योंकि आज ये जो फितना है एथीज्म का, अस्तग़फिरुल्लाह, हमारे लोगों में इतना यानी फैल रहा है, स्पेशली यूथ में, कि एथीस्ट हो जाते हैं, मैं एथीस्ट हूँ फलाना। तो ये पढ़े, वो इस चीज को पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना उनको, कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ तालीम नहीं है दीन की, तो फिर अंजाम क्या होता है? यही कि भाई खुदा का इनकार कर दिया। कितने फोर्सफुली कुरान कहता है इन्नहु लहक्कु मिन रब्बिक, तेरे रब की तरफ से हक है। वलाकिन अक्सर नासी ला युमिनून, लेकिन जान लो लेकिन अक्सर लोग ना ईमान नहीं लाएंगे। यानी तुम ये क्राइटेरिया ना रखना कि अगर ये हक होता तो फिर ये इतने सारे लोग, देखो ये वो फलां इतना एजुकेटेड है, फलां के पास इतनी डिग्री है, वो क्यों नहीं फिर ईमान ले आता? क्या उसको नहीं ये कुरान समझ आ रहा था? फिर वो फलां क्यों नहीं मान लेते? वो वैसे तो इतने अकलमंद है, वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, वो अल्लाह तआला ने पहले ही बता दिया, वो जानता है ना लोगों की साइकी को, उसने पहले बता दिया इसको क्राइटेरिया ना बनाना हक का, कि तुम इस बेस पे हक को परखो कि अगर ज्यादा लोग फिर सब क्यों नहीं मान लेते। तो ये वजह कुरान के हक होने की, तुम ये क्राइटेरिया, ये कसौटी ना रखो, क्योंकि अक्सर लोग तो मानेंगे ही नहीं। कभी आपने ये इन पैगंबरों की कहानियों में नहीं देखा, मेजॉरिटी हमेशा ना मानने वालों की होती थी, मेजॉरिटी, कभी नहीं ऐसे हुआ कि अक्सरियत ने मान लिया। तो इंसान की साइकोलॉजी नहीं बदलती, जैसे आज से हजारों साल पहले थी वही आज भी है, आप भी लोग नहीं मानेंगे, तो तुम इसको क्राइटेरिया बना के और इससे दूर ना भागना या इसमें शक ना करना, अक्सर लोग नहीं मानेंगे। अमन अजम मन अल्लाह का देगा, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह से झूठ मान दे। ये अल्लाह के कलाम पे झूठ मानना ना अल्लाह पे झूठ मानना है, क्या हर एक अल्लाह को तो मानता ही है, सब कहते हैं गॉड है, मगर जब कहने लग जाएं कि कुरान को नहीं हम मानते, या ये कहें कि हाँ ये कुरान है इसने खुद ही घड़ लिया है, ये तो इनके प्रॉफिट ने बनाया हुआ, तो ये अल्लाह पे झूठ है। उलाए का योर अधून आला रबी है, ये ही लोग जब पेश किए जाएंगे अपने रब पे, यानी योर अधून, वो पेश किए जाएंगे, वो खुद नहीं हाजिर हो जाएंगे, उनको नहीं है कोई शौक के अल्लाह के आगे खड़े हों। तुम फिक्र ना करो, तुम ना भी अल्लाह के पास आना चाहो, वो तुम्हें खुद ही पेश कर लेगा, सब के सब हाजिर किए जाएंगे, अकेले अकेले अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे। वयकूलुल अशहाद, और कहेंगे वहां पे गवाह, यानी एक गवाह नहीं है, बहुत सारे गवाह होंगे वहां पे, वो सारे गवाह कहेंगे, क्या कहेंगे? हाउलाए लदीना कतबू अला रब्बिहिम, ये हैं वो लोग जिन्होंने अपने रब को की बात को झूठा कहा, जिन्होंने झूठ कहा अपने रब के ऊपर। अब ये कौन गवाह होंगे उस दिन जो ये कहेंगे? सबसे पहली बात तो किरामन कातिबीन, मुजाहिद कितादा का, इब्ने जुरैज का ये रिवायत है कि इन गवाहों से मुराद ये फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन। इसी तरह और कौन गवाह होगा? जहाक ने कहा कि अंबिया और रसूल गवाह होंगे, जैसे कुरान करीम में है ना, फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका हाउलाई शहीदा, तो वो भी गवाह होंगे अम्बिया और रसूल। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो मोमिन होंगे वो भी गवाह होंगे, जैसे सूरह बकरा के शुरू में वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसरदन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास, ताकि तुम लोगों के ऊपर गवाह बनो और रसूल तुम पे गवाह बने, और इनके अपने आज़ा भी गवाही देंगे, कुफार के जो खुद अपने बॉडी पार्ट है ना वो उनके खिलाफ गवाही देंगे कि ये गलत करते थे, ये कहते थे। तो ये इतने सारे गवाह होंगे वहां पे, और ये सारी गवाहियां क्या कह रही होंगी कि ये अपने रब पे झूठ बांधते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुफार और मुनाफिकीन को तो के लिए तो तमाम लोगों के सामने ये ऐलान किया जाएगा कि ये लोग हैं जिन्होंने अपने रब पे झूठ बांधा। सबके सामने अनाउंसमेंट होगी, ये है जिन्होंने रब के ऊपर गलत बात मान दी, मैंने कोई शिर्क किया वो भी झूठ बांधना है रब के ऊपर, कुरान को नहीं मानना वो भी झूठ बांधना है रब पे, कुरान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम कह देना वो भी झूठ बांधना है रब पे, ये सारे झूठी है ना। अला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, खबरदार रहो अल्लाह की लानत है जालिमों के ऊपर। यानी अब ये ऐलान हो रहा है आखरत में कि अल्लाह की लानत, लानत का मतलब क्या है, ने उसकी रहमत से दूर धुतकारे गए, सबके सामने ये कहा कि ये धुतकारे गए हैं जालिम लोग। जालिम कौन, ये जिन्होंने झूठ बांधा, जिन्होंने शिर्क किया, मतलब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई झूठ बांधने में आ जाती हैं। अल्लाह ताला ने तो शिर्क की कोई सनद नहीं इस दुनिया में, शिर्क के ऊपर कोई सबूत नहीं है, फिर भी जो शिर्क करे जुल्म है, अल्लाह पे झूठ घड़ना है। ये कैसे लोग हैं जालिम, इनका काम क्या होता है, जिनके ऊपर लानत की गई, अल्लादीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं लोगों को, खुद भी नहीं मानते। तो अब मुशरिकीन ने मक्का को देख ले, इतना टॉर्चर करते थे। मैंने आपको बताया सूरह हूद के नजूल के जमाने में तो क्या हालात थे, यानी कोई अगर ईमान ले आता तो समझ ले अपने लिए मुसीबतें खड़ी करने के बराबर था। तो बताया गया कि खुद भी नहीं मानते, दूसरों को भी नहीं इस तरफ आने देते, इतनी अजियतें देते हैं अल्लाह के रास्ते से ताकि लोगों को रोक दें। वयबगूनहा अवजा, और दीन में टेढ़ापन निकालते हैं, दीन टेढ़ा नहीं है मगर दीन से या इस कुरान में से ऐसी ऐसी बातें निकालना कि लोग बस शक में पड़ जाएं। जाहिर है जब अपने अंदर गंदगी होगी ना तो बाहर भी इंसान गंदगी निकालेगा, अपने अंदर टेढ़पन है, अपनी नजर सही नहीं है तो फिर उसको टेढ़ा ही नजर आएगा ना, हर चीज टेढ़ी नजर आएगी। तो ये बस अस्तग़फिरुल्लाह, यानी मुसलमानों में भी आज ऐसे लोग हैं जो इस कुरान में टेढ़पन निकालते हैं, नहीं कुरान की आयतें लेकर आ जाएंगे, देखें जी कुरान तो ये कह रहा है, तो ये तो ये कहता है और आप ये कह रहे हैं, तो तुम हदीस देख लो कुरान की और जगह उसकी तफसीर देख लो। कहा है ना अभी हमने शुरू में पढ़ा कि एक जगह कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफ बात होती है, दूसरी जगह उसकी तफसील होती है। लेकिन चूंकि इनकी अपनी सोच टेढ़ी है तो कभी पर्दे के ऊपर, कभी औरत की एक गवाही, यानी दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर उसके अंदर लेकर आ जाएंगे, कोई शोशे निकालने शुरू हो जाएंगे, कभी खाने पीने की चीजों के अंदर हलाल हराम के अंदर शोशे निकालेंगे, कभी सूद के ऊपर करेंगे, कभी कुछ निकाल के आए दिन, कभी चार शादियों के ऊपर शुरू हो जाएंगे, कभी लौंडियों के ऊपर शुरू हो जाएंगे, कोई ना कोई उन्होंने ना बात टेढ़ी करके ऐसे निकालनी है कि लोग कहीं इस दीन की तरफ ना आ जाए। अच्छा फिर इसके बारे में आप क्या कहती हैं? अब यानी अपनी सोच टेढ़ी है ना कुरान से, ऐसी चीज कुरान में नहीं है कोई टेढ़पन, पर ये खुद बनाते हैं चीजों को, ट्विस्ट करते हैं इस तरह। और ये अपने ऐसे लोग ज्यादातर वो जो बेचारे यानी इतने नहीं होते, कम पढ़े लिखे, या वो ज्यादातर वो लोग नहीं ऐसे होते, ये जो बहुत अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे और बड़ा हमने कुरान पढ़ा हुआ, बड़े इंटेलेक्चुअल, वो ज्यादातर ये करते हैं कि वो अब इतना ही अपने आप को समझने लगते हैं कि हम जो मर्जी इसमें से निकालें और क्रिटिसाइज करें तो शोशे निकालने की कोशिश करते हैं। शायद आप भी किसी से ऐसे इनसे मिले हों जो ऐसे करते हों। वहम बिल आखिरति हुम काफिरून, और वो आखरत के इनकारी हैं। अगर आखरत का इनको यकीन होता ना, अल्लाह के आगे पेश होने का इनको कोई खौफ होता तो ये ऐसी बातें ना करते। लम यकूनु मुअज्जिज़ीना फिल अर्द, ऐसे लोग ये अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते जमीन में, ये सोचते हैं कि ये लोगों पे जुल्म करते के इस कुरान में को टेढ़ा करके दिखा के लोगों को हंसी उड़ा के मजाक उड़ा के समझते हैं कि ये दबा देंगे इस मैसेज को, नीचा कर देंगे इसको, अल्लाह को कोई आजिज नहीं, बेबस नहीं कर सकता। वमा काना लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, पर नहीं इनके लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार, फिर इनके पास कोई, जब अल्लाह ने पकड़ लिया ना कोई मददगार नहीं होगा। ये तो डील दी हुई अल्लाह ने इनको कि कुरान में से ऐसी बातें करते हैं और लोगों को इससे रोकने की कोशिश करते हैं। भी किसी से मैंने सुना, उन्होंने कहा कि कोई साहब है, वो अपने बच्चों को और उनको कहते हैं कि आप बाहर जाहिर ना करो कि आप मुसलमान, कहीं नमाज ना पढ़ो, कहीं आपका पता नहीं चलना चाहिए कि आप मुसलमान। आज मुसलमान ही ये कहने लगे, اللہ کے راستے سے روکنے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں, کہیں خوف دلا کے, کہیں مذاق اڑا کے, کہیں کسی طرح اور کہیں کسی طرح. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضاعف لہم العذاب, دو گنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب, دگنا. کیوں دگنا؟ اس کے برابر کیوں نہیں؟ ہم نے تو پڑھا تھا ایک گنا کا ایک ہی گنا لکھا جائے گا. دیکھیں ان کے کرائمز بھی تو کتنے زیادہ ہیں, ان کا جرم کوئی ایک تو نہیں ہے. خود بھی روکتے, لوگوں کو بھی روکتے, ٹیڑھ پن بھی نکالتے, آخرت پہ بھی نہیں بلیو تھا ان کا. یہ چاہتے تھے کہ ہم اس طرح بس اس بات کو دبا دیں کسی طرح. تو ان کے لیے عذاب بھی پھر اس کے مطابق ہی ہوگا. وہ کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون, نہ کانوا, نہ تھے وہ کہ استطاعت رکھتے سننے کی. جیسے کیا وہ بہرے تھے؟ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کیا وہ بہرے تھے, ڈیف تھے اور بلائنڈ تھے؟ اللہ کے نزدیک وہ ڈیف اور بلائنڈ ہی ہے جو یہ آنکھیں اور کان رکھتے ہوئے بھی حق کو نہیں سنتا, حق نہیں دیکھتا. جب حق بات بتائی جاتی ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے بہہ رہی ہیں, ان کو کچھ سنا ہی نہیں, اس کام سے سنا دوسرے سے نکال دیا. حق ان کو سننا پسند ہی نہیں ہے, اگر کہیں سن لیا تو تب بھی ایسے سنتے ہیں جیسے بالکل بہہ رہے ہیں. آپ کئی لوگوں دیکھ رہے ہیں بےچارے بڑی مشکلوں سے کسی قرآن کی مجلس میں آ ہی جاتے ہیں, ان کی جان پہ بن جاتی ہے کہ اللہ یہ کب ختم ہو. کبھی وہ ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ٹائم دیکھتے ہیں, کبھی فون دیکھتے ہیں, یعنی سننے کے استطاعت ہونے کے باوجود بہرے ہیں. اسی طرح تمہیں آنکھیں دی اللہ نے, ان سے ہی تم دیکھ لیتے, ان سے بھی کام لیا. تو سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو کیا کہیں گے, کاش ہم سنتے ہوتے, کاش ہم عقل رکھتے, کاش ہم سمجھ لیتے اس وقت دنیا میں. لیکن نہ دنیا کے اندر سنا نہ سمجھا. تو اولئک الذین خسروا انفسہم, ان لوگوں نے تو خود ہی اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا, اللہ نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا. ان کو اللہ نے آنکھیں بھی دی تھی, کان بھی دیے تھے, دیکھ سکتے تھے, سن سکتے تھے, سب سمجھ تھی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کا خود ہی نقصان کیا. فضل عنہم ما کانوا یفترون, گم ہو گئے ان سے جو کچھ وہ گھڑا کرتے تھے دنیا میں. بڑی اپنی ذہانتیں کر کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, یہ دلیلیں, وہ ایکسکیوزز, میں نے تو یہ آیت کی یہ تفسیر ہے, یہ ہے ایسا ہے. سب ان کی زبان درازیاں گم ہو جائیں گی. آج تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا, بڑی مہارتیں دکھاتے ہیں, تو کل کوئی بات نہیں آئے گی ان کو. لا جرم انہم فی الاخرت ہم الاخسرون, کوئی شک نہیں کہ بے شک آخرت میں وہی ہیں جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. کہ انہوں نے دیکھو عقل تھی, انہوں نے اپنی عقل کس چیز میں استعمال کی, ٹیڑھ پن نکال لینے. آنکھیں تھی, انہوں نے ہر چیز دیکھی, دنیا میں کمائیاں بھی کی اور پڑھائیاں بھی کی اور سب کچھ کیا, لیکن اللہ کی نشانیوں کو اگنور کیا. سماعت تھی لیکن کچھ سننے کو تیار نہیں تھے, تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے خسارہ پانے والے ہوں گے نا. جبکہ تین تین دلیلیں تھیں, اندر فطرت کی بھی تھی, قرآن بھی تھا, پچھلی کتابیں بھی تھی, نبی تھا, پروف تھے, پھر بھی نہیں مانے. اور صرف خود نہیں انکار کیا, دوسروں کو بھی کہ میں کوئی اور بھی نہ اس طرف آ جائے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے. واخبتوا الی ربہم, اور انہوں نے عاجزی کی اپنے رب کی طرف. اب یہ ایک نئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, جو اس سے پہلے نہیں ہم نے دیکھی. اس سے پہلے ہم ہمیشہ دیکھتے تھے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بس ایمان لائے اور صالح عمل کیے. اب ہم ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے خبات, یعنی اللہ کے سامنے جھک جانا, عاجزی, گر پڑے. آپ اچھا میں آپ کو اس کی ایگزامپل سے اس طرح بتاتی ہوں. آپ نے کبھی دیکھا ہو بیچ پہ لوگ بھاگتے ہیں, جب کبھی بچے بھاگ رہے ہیں یا کچھ ہے, تو یہ خبات ایسی کہ جیسے نشیبی اور جیسے سافٹ نرم زمین کے اوپر نہ گر جانا. تو آپ نے دیکھا جب وہ بھاگتے بھی آتے ہیں تو پھر اس کے بعد بھاگتے 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 جب رکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ریت پہ ایسے گر جاتے ہیں, گھٹنے رکھ دیتے ہیں. یہ ہے خبات, یعنی وہ اپنے رب کے سامنے ایسی عاجزی اختیار کرتے ہیں جیسے دھانسی گئے, جیسے بالکل گر گئے اس کے سامنے. یہ وہ لوگ ہیں, عاجزی ان کے اندر ہے, یعنی خود کو حقیر کر لیتے ہیں. یہ خبات پتہ کیا چیز ہے, ये उस वक्त आती है जब इंसान रब की अजमत को पहचान लेता है और अपनी जात को पहचान लेता है कि रब कौन है और मैं क्या हूँ उसके मुकाबले में। ये जब पहचान आ जाती ना, खुद ब खुद आजी आ जाएगी। आप ये इस आयत को जो पहली आयत है इस पारे की, इसके ऊपर आप गौर करें ना, आपके अंदर ये आजी आएगी, कहाँ मैं, कहाँ मेरा रब, कहाँ उसका इल्म, कहाँ उसकी हिकमतें, कहाँ मेरी ये छोटी सी अकल, मैं क्या चीज। तो तब इंसान झुकता ही जाता है, फिर नीचे गिरता ही जाता है। फिर तो ये लोग जो आजी इख्तियार करते हैं, खुद को हकीर कर लेते हैं अल्लाह के सामने, खुद को गिरा लेते हैं अल्लाह के सामने, खुद को बिछा देते हैं अल्लाह के सामने, उलाएका असहाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून, ये हैं जो जन्नत के साथी होंगे। यानी जन्नत में जाने वालों की ये खसूसियात है, ईमान साले अमल। ईमान भी देखिये, सिर्फ जुबान से इकरार का नाम ईमान नहीं है, ईमान भी शऊर के साथ इंसान ये मान जाता है जब अल्लाह को, तो यकीन जब उसके अंदर आ जाता है, अल्लाह को पा लेना, ये ईमान है। और ईमान से ही, ये ईमान समझ लें बीज है, उससे अमले साले फूटते हैं। जब ईमान होगा तो साले अमल खुद ब खुद आएंगे। हाँ, फिर आप ये नहीं कहते नहीं जी आपको क्या पता हमारा बातिन कितना अच्छा है, जाहिर से अगर हम ऐसे लगते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई ईमान कमजोर है या ईमान कम है। हम आपसे कोई कम ईमान वाले नहीं है, आप तो बस बाहर बाहर देखते हैं ना, हमारे अंदर का हमें पता है कि हम कितने अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं होता। देखिए, ईमान अंदर है, आमाल साले बाहर का जाहिर है, समझ आए। दिल में ईमान और बाहर में क्या, उसकी उसके इफेक्ट्स नजर आने लगते हैं। वो इफेक्ट क्या है, साले अमल, अमल साले होना शुरू हो जाता है। तब ये नहीं आप कह सकते अमल ना हमारा, देखो हम तो बस वैसे बहुत अच्छे हैं, वो ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। नहीं, जब ईमान होगा आसार नजर आएंगे, मामलात में, अखलाक में, रवैयों में, खर्च में, सब में नजर आएंगे। तो हर उसके बाद अखबात, जब अल्लाह की पहचान हो जाएगी, ये एक नेक्स्ट स्टेज है समझ लें, ये एक समझ लें आप तरक्की है कि अखबात के लेवल पे कोई इंसान पहुंच जाए कि रब की बात आए और इंसान झुक जाए, ऐसे गिर पड़े जैसे मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी है, जो आप ऐसे रेत के ऊपर गिर जाता है ना कि अल्लाह ताला का हुक्म आए, फिर सोचो में नहीं पड़ जाए, हम सोचेंगे, अभी हम देखेंगे, अभी हम परखेंगे, अभी हम फूंक फूंक के कदम रखेंगे, अभी हम फलां से पूछेंगे, अभी हम मशवरा करेंगे। नहीं, उनको नहीं किसी की बात का होता, वो अल्लाह की बात सुनते हैं और टूट जाते हैं, उनके दिल झुक जाते हैं, कोई तकब्बुर नहीं है, कोई अना नहीं है। ये एडवांस लेवल के लोग हैं, ये ऊपर के लोग हैं, इसलिए कि इन्होंने अपनी हस्ती को पहचान लिया, अपनी जात को जान लिया कि मैं कितनी छोटी हूं, और अल्लाह को पहचान लिया कि वो कितना बड़ा है। तो तब इनके अंदर ये क्वालिटी आती है, तब फिर कैसे इंसान कह लेगा जो अपने आप को इतना छोटा समझता हो, वो फिर कैसे कहेगा मैंने नहीं अभी मानी बात, ये ऐसे कैसे कर सकता है। जब हम दिल में ना अपने आप को बड़ा समझते हैं ना, तभी हम कहते हैं कि मेरी मर्जी चलेगी। जिसमें आजी आ जाए, जो खुद टूट जाए अल्लाह के आगे, गिर पड़े, वो तो अपनी जात को कुछ समझता ही नहीं है, वो फिर कैसे कहेगा कि जी मैंने तो, मैं वो फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, ये कौन कहेगा और वो कौन कैसे कहेगा, मुझे कैसा देखेगा और मेरे बारे में क्या सोचेगा। कहता मेरा रब बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटी हूँ, और ये छोटा होना ही उससे सारे अमल करा लेता। ये बहुत प्यारी बात है, अखबत रबी अल्लाह हमारे अंदर ये पैदा फरमाते कि हम भी इस लेवल पे पहुंच सके। ये जन्नत की प्राइस है, कौन प्रूव कर सकता है कि वो ईमान साले अमल और अखबात आजी लोगों के सामने नहीं, कि वो जी वो इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, वो प्रेसिडेंट है, वो फलाना है, उसके सामने आजी झुक झुक के सलाम, नहीं, इला रब्बिहिम, अपने रब के सामने। अल्लाहु अकबर। मसलुल फरीकैन, ये मिसाल इन दो ग्रोहों की, एक ये ग्रोह है ना, ये जो लोगों को रोकता भी है और कभी भी तलाश करता है और ऐसे करता है, और एक वो जिसने गवाहियां जिसको मिली और वो मान गया اور وہ ایمان لاتا ہے, صالح عمل کرتا ہے, رغبات اس کے اندر ہے. یہ دو گروہ, یہ پتہ ہے ان کی مثال کیسی ہے؟ کل آما والاسن والبصیر والسمیع, جیسے اندھا اور بہرا. یہ اندھا اور بہرا ہے, یہ جو آیت نمبر 19 اور اس میں بتایا گیا 20 میں, یہ تو بات ہو گئی نا. یہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں, کان رکھتے ہوئے بھی بہرے ہیں. ایسے نہیں کہ یہ ہینڈی کیپ ہیں بےچارے, وہ تو اللہ کی طرف سے ان کے پاس نہیں یہ قوتیں, یہ رکھ کے بھی یہ حال ہے ان کا. وہ اور ول بصیر و سمیع, اور دیکھنے والا اور سننے والا, آپ ان کو برابر کہتے ہیں؟ کوئی کہے گا کہ یہ برابر ہے؟ ایک بلائنڈ ہے بےچارا کھڑا ہوا اور ایک اس کی آنکھیں ہیں, کیا آپ ان کو برابر کہیں گے؟ نہیں, کوئی بھی ان کو برابر نہیں کہے گا. تو پھر یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو ایمان لایا, صالح عمل کرے اور جو عاجزی کرے اپنے رب کے سامنے, وہ اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ظالم ہے, جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا, جو ٹیڑھ پن تلاش کرتا ہے اس دین میں, جو دین سے لوگوں کو روکتا ہے, یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے, جنت والے کامیاب ہیں. پھر فرمایا قرآن میں ایک جگہ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے, زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے, دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح ایک ہدایت جس کو مل گئی ہے اور جو بے ہدایت ہے, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ ایک آنکھیں کھول کے جینے والا ہے اور ایک آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے زندگی کے اندر, دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ ایک اندھا بن کے چلنے لگا, تو تم فرق نہیں سمجھتے دونوں میں؟ دونوں میں بہت فرق ہے. جیسے سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہوتے, اس طرح یہ بھی برابر نہیں ہے. اللہ کے نزدیک بہت فرق ہے. حل یسویان, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلا مثال میں افلا تذکر, ان کیا بھلا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس مثال سے تمہیں کوئی سبق نہیں ملتا کہ تم نے کس میں ہونا ہے پھر؟ کیا تم اندھے بن کے پھر رہنا چاہتے ہو؟ کیا حق کو دیکھ لینے کے بعد بھی اندھے رہو گے؟ یا تم اپنے لیے آنکھیں چاہتے ہو کہ تم دیکھ کے اور پھر قدم رکھو؟ سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں باقی آیات کی.
ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه ليئوس کفور. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فلا تك في مرية منه, إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون